हरे कृष्ण। तो आज आप सबको विदित है श्री गौर पार्षद श्रीवास पंडित, इनको कभी श्रीनिवास भी कहते हैं कभी श्रीवास कहते हैं, उनके तिरुभाव तिथि है, तो इसलिए उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हम जो पंचतत्व मंत्र गाते हैं प्रतिदिन हर एक माला जप के शुरुआत में और अंत में कीर्तन में हर एक प्रकार कीर्तन में, सबको मालूम है ना पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, ये हमारा मूल मंत्र है। जप तो हरे कृष्ण महामंत्र लेकिन मूल मंत्र यहीं से शुरू करते हैं। ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्, भगवान स्वयं आपने आपको उस पांच रूप में व्यक्त किए हैं। तो उसमें कौन क्या क्या है बोलते हैं, इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, इसमें स्वयं भक्त रूप है चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तर नित्यानंद भाई, और भक्त के स्वरूप है उनके नित्यानंद भाई, भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, ए तिनी तत्व सबे प्रभु करी गाई, ये जो तीन है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत महाप्रभु, ये तीन को प्रभु करके मानते हैं। एक महाप्रभु अर दुई प्रभु दुई जन दुही प्रभु सेवे महाप्रभु रचरण, एक महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु है, दो प्रभु श्री नित्यानंद और अद्वैत, ये दोनों मिलकर के महाप्रभु के चरण सेवा करते हैं। यही तीन ही तत्व सर्वाराध्य करी मानी, ये जो तीन है ये सभी के आराध्य तत्व है, ईश्वर तत्व है। चतुर्थ से भक्त तत्व आराधक करी जानी, जो चतुर्थ तत्व है वो भक्त तत्व है, वो आराधक है, वो तीनों आराध्य है और ये आराधक है, आराधक करी जानी। श्रीवास आदि जत कोटि कोटि भक्त गण शुद्ध भक्त तन मध्य ता सवार गणन, शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन, जो श्रीवास आदि, श्रीवास को अकेले नाम नहीं लिया गया, श्रीवास आदि श्रीवास इत्यादि जितने भक्त हैं सब भक्त तत्व है, जीव तत्व है, आराधक तत्व है, ये सब शुद्ध भक्त कोटि में आते हैं। और बाकी कौन रह गए, गदाधर ये प्रभु के शक्ति तत्व है, शक्ति करके जाने। तो इस प्रकार ये पांच तत्व है जिनको हम हमेशा गाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये प्रचार कार्य शुरू किए थे तब उनका ये प्रेम नाम संकीर्तन का जो प्रचार को एक प्रेम कल्प तरु के साथ वर्णना किया गया, तरु मतलब वृक्ष, प्रेम कल्प वृक्ष, इस प्रेम कल्प वृक्ष के अनेक अनेक शाखा है, और शाखा वर्णन में महाप्रभु स्वयं कहते हैं, शिवास पंडित अर श्रीराम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित, वो जो दो भाई है शिवास पंडित और श्रीराम पंडित, वो दुई भाई दुई शाखा जगते विदित, दो भाई दो मुख्य शाखा है प्रेम कल्प वृक्ष के, दो मुख्य शाखा है दो भाई शिवास पंडित और श्रीराम पंडित। श्रीपति श्रीनिधि तारा दुई सहोदर, उनके और दो छोटे भाई थे श्रीपति और श्रीनिधि, उनके दुई सहोदर थे, चारी भाई दास दासी गृह परिकर, वो चारों भाई उनके जिसे नौकर चाकर दासी दास उनके बेटा बेटी सब मिलकर के दुई शाखार उपशाखाए ता सवार गणन, ये दो शाखा का उपशाखा के रूप में गणन करते हैं। जारा गृह महाप्रभुर सदा संकीर्तन, शिवास के घर में महाप्रभु का हमेशा संकीर्तन लीला होता था, जारा गृह महाप्रभु र सदा संकीर्तन सबन से करे न जारा चैत, दुई शाखा र उपशाखा ता सवार गणन, सबन से करे न जारा चैतन्य र सेवा, पूरे वंश मिल करके समस्त लोक मिल करके सपरिकर केवल चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, सबन से करे न जारा चैतन्य र सेवा गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा, गौरांग महाप्रभु के अलावा कोई देवी देवता इधर कुछ भी नहीं जानते। एकमात्र आराध्य, एकमात्र पूज्य, एकमात्र सम्मान्य और सेव्य श्री गौरांग महाप्रभु। इस प्रकार भावना में श्रीवास और उनके परिवार चार भाई उन्होंने भगवान की सेवा में लगे थे और कुछ जानते ही नहीं थे, जानने की इच्छा भी नहीं करते थे कि और कोई है दुनिया में, नहीं, उनके लिए सब कुछ श्री गौरांग महाप्रभु थे। तो ऐसे कि मदंती है, हम जानते हैं कि महाप्रभु की लीला में श्रीवास आदि चार भाई थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि। लेकिन ऐसे है कि उनके और भी बड़े भाई थे, श्रीवास के ऊपर में और एक बड़े भाई थे, उनका नाम था नलिनी पंडित, नलिनी। तो वो और उनके पत्नी दोनों का देहांत हो चुका था, वो जो छोटे छोटे थे, बड़े भाई उनके भाभी दोनों गुजर गए थे, और उनके भैया भाभी के एक छोटी सी बेटी थी जिनका नाम थी नारायणी। वो छोटी सी बेटी उनको श्रीवास और उनके पत्नी और उनके भाई वो सब ने पालने लगे, क्योंकि वो तो भैया भाभी चले गए छोटी बेटी छोड़ करके, तो उनको लालन पालन कर रहे थे, वो चार भाई रह गए। ऐसे गौड़ीय ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि श्रीवास ठाकुर बचपन में, जो बालक अवस्था में, बड़े उदंड बालक थे, बहुत बदमाशी कर रहे थे, बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे थे, कोई पूजा वूजा नहीं करते थे, बहुत बदमाशी कर रहे थे, लोग तंग आ गए थे गांव में, ये कितना बदमाश लड़का है, इतने तंग थे। तो अब उनका जब 15-16 साल का उम्र होने हो रहा था, पढ़ा लिखा तो कुछ करते नहीं थे, बदमाशी करते थे। तो एक बार उनको एक एस्ट्रोलॉजर आया, तो उनके भाई लोग सब मिलकर बोली, क्या इतने उदंड बालक, देखो उनका कुष्ठि गणन करो कैसा है। तो बहुत बड़ा ज्योतिष था, वो आकर के उनके कोष्ठि देखा, हाथ देखा, देख करके बोला, मैं बताऊं, सत्य बताऊं ना क्या, अरे अभी तो 15 दिन में मरने वाला है। अरे बाबू, उसे काल आ गया है, 16 साल में उसका मृत्यु है। उसको सुन करके श्रीवास ठाकुर डर गए, बोले मर जाऊंगा ना, हाँ मरेगा, बोला मेरा गणना का भूल नहीं होता। इतने वो बदल गया, बोला क्या करूं, मरने से पहले क्या करूं, रोने लगा, बोला अब क्या करूं, पूरा समय बिता दिया, अब तो मरने वाला है, अब महीना 15 दिन बाकी है, बोले क्या करो ना, कृष्ण भजन करो, कृष्ण कथा सुनो और कृष्ण भजन करो। बोला अभी तो नहीं किया, अभी 15 दिन महीने में क्या करूं। इतने सीरियस हो गया, सीरियस हो जाना चाहिए, अगर हमको भी डेथ नोटिस इशू हो जाए हम भी सीरियस हो जाएंगे, हमको इशू नहीं हुआ इसलिए मस्ती कर रहे हैं। जिस दिन मृत्यु का नोटिस मिल जाए उस दिन देखना सभी का हाल भी सीरियस हो जाएगा। तो उनको जब मिल गया, अरे वो तो घर उनके परिवार भाई को छोड़ करके एकांत में जा करके अहर निशी दिन रात कृष्ण कृष्ण भजन करने लगा, और जहां कृष्ण कथा वो भागवत पढ़ा रहे थे नवदीप में देवानंद पंडित, वहां जाकर बैठ रहे थे। अब बैठे थे क्लास में, हटात काल समय आ गया, 16 साल तो हो चुका था, अब मर गए, उनको हटा करके रख दिए, तो मर चुके थे, उनका आ गया था, सुनते सुनते मर गए थे। तो ऐसे की मदंती है, अभी महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था, महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन महाप्रभु तुरंत प्रकट हुए उनके सामने। अभी जन्म नहीं हुआ था महाप्रभु का, लेकिन उस स्वप्न में आए, आ करके बोले तू कैसे मर जाएगा, एक थप्पड़ मारे उसको, हट उठो। तो महाप्रभु के एक थप्पड़ खा करके उनका चेतना आ गया, जग गया, और वो श्रीवास नहीं रहा, वो भक्त श्रीवास हो गए। महाप्रभु के हस्त कमल के स्पर्श पा करके बोले तू मेरे पार्षद नारद जी है, तू कैसे मुझे छोड़ के जाएगा, मैं तभी आया ही नहीं है। तो महाप्रभु आढ़ शुकिंग कर दी उनके लिए, तो फिर रेडी होकर रहे भजन करके। महाप्रभु का जन्म बाद में, बहुत बाद में हुआ। और ऐसे उनके घर आप लोग मायापुर गए होंगे, महाप्रभु के माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सची माता, उनके घर जो जोगपीठ है उनके बाजू में ही श्रीवास के घर है, और श्रीवास जगन्नाथ मिश्र के एज के हैं, तो महाप्रभु से बहुत बड़े हैं, पितातुल्य हैं श्रीवास और मालिनी उनके पत्नी, और उनके सारे भाई बहुत एजेड हैं। लेकिन वो चारों भाई कंबाइंड फैमिली था, एक बड़े भाई तो गुजर गए थे, चारों भाई रहते थे जगन्नाथ मिश्र के घर के बाजू में, उनका घर था, लेकिन क्या करते, चारों भाई थे और चारों गृहस्थ थे, लेकिन कुछ काम धंधा नहीं करते थे, कुछ व्यापार नहीं, नौकरी नहीं, धंधा कुछ भी नहीं करते थे। क्या करते थे, दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस कीर्तन करते थे। अब कीर्तन करते थे, कभी कभी उदंड कीर्तन करते थे, नाचते थे, बड़े जोर से गाते थे, रात भी कीर्तन करते थे। और बाकी उनके पड़ोस पड़ोस में गांव के लोग तंग हो गए थे, बोले ये हो क्या गया, ये पागल हो गए, अरे रात को सोते भी नहीं है, हम कोई तंग करते हैं। कुछ लोग बोले सोएंगे कैसे, वो कुछ काम धंधा ना करते नहीं, भूखा रहते हैं, भूखे पेट में नींद नहीं होता, नींद नहीं होता तो चिल्लाते हैं और हमको भी सुनने नहीं देते, ऐसे बोलते हैं। बोले कि अरे वो चतुर्मास था, ये समय आ गया, वो तो कीर्तन करते रहते हैं, वो हरि नाम में ही अपने शरीर पोसते थे वो, उनके परिवार सारे। तो गांव के लोग आ करके बोले ये पागल हो गया है, अरे अभी भगवान शयन करते हैं, अभी शयन करते से आएगा ना, बोले भगवान शयन किए हैं और दिन रात चिल्लाते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है, अगर भगवान को सोते समय उसको डिस्टर्ब करेगा भगवान गुस्सा हो जाएंगे तो बदला लेंगे, सब नाश कर देंगे, सत्यानाश हो जाएगा सारे गांव में। बोले कि अरे हमारा गांव लूट जाएगा, उसके वजह से भगवान को सोए हुए वो जगाता है, हल्ला करके चिल्लाता है उनका नाम लेकर के। सारे गांव वाले तंग हो गए, उनको खूब गाली देने लगे, कोई बोला उसको घर उठाकर गंगा में फेंक देते हैं, बोले उनको उठाकर मार देते हैं, कई सारे लोग उनके शत्रु बने, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहे थे, खूब गाली गुलाम कर रहे थे, खूब उनके विरोध किए, अंततः उनमें सहन नहीं हुआ, कुछ लोग जा करके उनके जो मुल्क में जो काजी था, जो कलेक्टर था, उनको जाकर कंप्लेन किए, ब्राह्मण लोग भी, हिंदू लोग, मुस्लिम नहीं थे, हिंदू ब्राह्मण लोग जाकर कंप्लेन किए, बोले तो क्या हो गया, ये दिन रात ऐसे करता है, अरे भगवान का नाम लेना हो चुपचाप लो, ये क्या है, भगवान को भी तंग करता है, हमको भी तंग करता है। तो जाकर इतने नालिश किए तो जो कलेक्टर था बोला कि अच्छा डिस्टर्ब करते ना आपको, आप तो मुसलमान कंट्री में तो सारे तो ऐसे हरिनाम कर रहा हो, ऐसे कर रहा, हम लोग भी डिस्टर्ब है, हिंदी लोग भी कंप्लेन की। तो उन्होंने कुछ पुलिस भेजा, बोला जाओ और गुरु को बंद करो, हिंदू काफिर है। तो कुछ पुलिस आए तो गांव वाले साथ में आए, तो हो रही ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो आ करके शिवा संघ भाई लोग कीर्तन करते थे, आकर खूब उसको डांटे, डांट करके मृदंग तोड़ दिए, खोल तोड़ दिए, मृदंग को खोल कहते हैं, तोड़ करके गाली देकर बोले फिर कीर्तन करेंगे, सब बांध कर ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। सब डर गए और गांव वाले तो पहले से विरोधी थे, बोले अभी तो नौका भर के पुलिस आएंगे, बांध कर ले जाएंगे, ये होगा ये होगा, बहुत बड़े बड़े बात करने लगे। शिवास जी डर गए, आप कभी गए होंगे मायापुर, जब देखेंगे शिवास आंगन, वो साइन बोर्ड में लिखा है खोल भंगार दंगा, कोई पढ़े आप लोग ने, ये लिखा है खोल भंगार दंगा, ये शिवास आंगन, खोल मतलब मृदंग, मृदंग को तोड़ दिए थे, ये दंगा हुआ था, मतलब वही झगड़ा हुआ था वहां पे, मृदंग तोड़ा गया था। तो लोग तो चले गए और शिवास उनके भाई लोग डर गए, वो जा करके कबाड़ बंद करके उन्होंने शिवास जी को सोचे कब क्या करें, कीर्तन बंद कर देंगे। तो उनके उपास्य देव श्री नरसिंह भगवान थे, अब भक्त लोग तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी होने से जय नरसिंह श्री नरसिंह करेंगे, वही भगत था, तुरंत नरसिंह भगवान को अल्टर में जा करके कबाड़ बंद करके बड़े सीरियसली प्रार्थना करने लगे, ये महाविपद आ गया, हम क्या करेंगे, कृष्ण कीर्तन बिना हम जी नहीं सकते हैं, और गवर्नमेंट भी एक्शन लेने लगा, गांव वाले तो पहले से विरोधी थे, हम क्या करेंगे, प्रार्थना कर रहे थे। अभी महाप्रभु श्री निमाई पंडित के रूप में उनके प्रकट हो चुका था, अभी बालक अवस्था थे, बिल्कुल 12-14 साल की उम्र का था, पूरे नवद्वीप में उनके प्रसिद्धि था पंडित करके, निमाई पंडित के रूप में बड़े विद्वान बालक है ऐसे माना जाते थे। वो रोज घूमते फिरते उनको सब शिवास आदि बड़े बड़े लोग बोलते, बोले इतने बढ़िया बालक है, ब्राह्मण बालक है, इतने रूप गुण बढ़िया है, लेकिन कृष्ण भजन नहीं करता, ये पढ़ सुन करके मूल्य क्या है, पढ़ने का लक्ष्य क्या है जब तू भक्ति नहीं करेगा, ऐसे सब उनको बोलते थे। एक दिन हठात महाप्रभु निमाई पंडित उनका मन में भाव आया, जाके सबको पैर छूने लगे, सबको सम्मान करने लगे, बोले क्या हो गया ना, आप सब आशीर्वाद दीजिए, भक्त के आशीर्वाद से भक्ति होता है, भक्ति वाकई कई प्रकार से नहीं होता, आप लोग सो कृष्ण भक्त है, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, मुझे सेवा दीजिए, आपकी सेवा करूंगा, आपके कृपा प्राप्त करूंगा, मैं भी एक दिन भक्त बन जाऊंगा। सारे खुश हुए, बोली इतने अच्छा बालक सही भक्त बनना चाहता है। अब करते करते भगवान की याद आया, भक्त भाव प्रकाश करना, अब जितने हो गया टाइम, अब तो सीरियस बनना है। तो हठात उनकी याद आया, गंगा के किनारे घूम रहे थे, कुछ गाय चर रहे थे, घूम रहे थे, तो उनको याद आया कि श्रीवास नृसिंह आराधना कर रहा है, अभी उनको बड़ी विपत्ति आया है, भगवान तो सख्यात महाप्रभु तो अंतर्जामी है, समझ गए। समझ करके गंगा के किनारे घूमते 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 चले गए श्रीवास को। श्रीवास तो कबाड़ बंद करके चारों भाई बिल्कुल सीरियसली नरसिंह भगवान के सामने जप कर रहे हैं, नरसिंह मंत्र उपासना कर रहे हैं, क्या करें, वो धरतर कांप रहे हैं, वो खोल तोड़ दिए। और पुलिस आकर के इतनी धमकी देकर गया, गांव वाला तो पहले से इसे विरोध कर रहे हैं। अब बालक निमाई जाकर के सीधा श्रीवास के घर में पहुंचा, बाजू में तो था ही, पहुंच गया, जाकर के चिल्लाने लगे आवाज के, ए श्रीवास क्या कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है, जिसको तू पूजा कर रहा है वो बाहर खड़ा है, तू अंदर क्या कर रहा है। ऐसी आवाज के जोर से श्रीवास बोला, कौन कौन आवाज कर रहा है। तो दरवाजे को लात मारे जोर से, दरवाजा धड़ से खुल गया, श्रीवास धड़ से खड़ा हो गया। कौन? देखा रे निमाई पंडित। बोले तेरा क्या हो गया? तो उनका घर के बाजू में है। बोले हो क्या गया निमाई पंडित? अरे वो तो देख के डर गया। निमाई ने दो हाथ बोले चार हाथ हो गया था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, ऐसे अद्भुत रूप प्रकट करके इसे बोल रहे थे, उनको तेज को देख करके उनके समलाने थर थर कांपने लगे। श्रीवास बोला सब बुलाओ, तेरे परिवार को, सारे घर परिवार को बुलाओ, अब मेरे स्तुति करो, पूजा करो। अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, मैं इधर हूं, तू क्यों डरता है? ऐसे कह करके घुस गए घर के अंदर। जो उनके अल्टर था, पूजा वेदी जहां पर नरसिंह देव विराजमान, उनको साइड कर खुद बैठ गए उसके जगह, अल्टर में खुद बैठ गए। बोले कर मेरा पूजा, मर मेरा स्तुति कर, प्रार्थना कर। श्रीवास थर थर कांप रहा है, बालक को हो क्या गया? अरे ये स्टूडेंट है, ये क्या हो गया? भगवान का अल्टर में चढ़ करके भगवान को साइड करके बैठ गया नरसिंह भगवान को। अरे बैठ करके नरसिंह आवेश में बोलने लगे, और श्रीवास डर गया, और सारे सब अंश सपरिकर आकर के उनको प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। तो महाप्रभु बोले तुझे विश्वास नहीं होता, क्यों डरता तुझे? मैं जब तक हूं कोई डरना नहीं, तुझे विश्वास नहीं होता? श्रीवास कुछ बोल नहीं, क्या विश्वास करूं, जानता हूं तू मेरे बाजू में है, छोटा सा बालक है, बदमाश उदंड बालक है, और तू ऐसे बोल रहा है, सिर्फ अल्टर में चढ़कर मैं क्या करूं? मतलब विश्वास नहीं होता, प्रमाण दिखाऊं तुझे? अभी केवल तीन साढ़े तीन साल सवा तीन साल के वो लड़की थी नारायणी, बोला ए नारायणी इधर आओ, छोटी सी वाली तीन साल की लड़की थी, उनको बुलाया, नारायणी आ गया, बोले बोलो कृष्ण बोलो। जैसे महाप्रभु अल्टर में बैठ कर कृष्ण बोले, तुरंत उर्ध भाव कर दो हाथ उठा करके तीन साल की बच्ची नारायणी तुरंत हा कृष्ण करके रो करके मूर्छित हो गया, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। महापुरुष स्पर्श के उठ करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी। उसको देखकर तो पूरे सपरिवार बोले बाप रे बाप, ये छोटी सी बच्ची में तुरंत 11,000 करंट पास करा दिया, बोलते ही इतने हेवी। तब तो विश्वास, विश्वास हो गया ना, क्यों डर रहा है? ये मुसलमान काजी कलेक्टर क्या करेगा तेरा, मैं जाऊंगा खुद, ये तू मेरा उपासना कर रहा है, मेरा नाम कीर्तन कर रहा है, मैं स्वयं जाऊंगा, जाकर के उसे चैलेंज करूंगा काजी को, एक तेरे पास जितने मौलवी मुल्ला सबको बुलाओ, पंडित को सबको बुला के लाओ, जितने तेरे पंडित है, और जितने ऊंट घोड़ा गधे खच्चर सबको लाओ, अब बोलूं सबको करा, उनको तेरे पंडित को बुला, मौलवी को सब उनको कीर्तन कराए, हरि नाम है कराए, अल्लाह अल्लाह बुलाए, बुलाए तो कुछ, और वो कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं वहीं पे खड़े होकर के काजी से और मुल्ले से और घोड़े हाथी गधे खच्चर से बुलाऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, करा दूंगा कीर्तन, वही सब देखते रहेंगे, तब कैसे विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे करूंगा, क्यों डरता है तुम्हें? ऐसे उनको आश्वासन वाणी सबसे पहले दिए। श्रीवास पहले बार देखे कि ये तो कुछ अद्भुत है, ये साधारण निमाई नहीं है, बालक निमाई नहीं है। उसके बाद में अब थोड़ी देर बाद में उनके पिताजी गुजर गए थे, तो उन्होंने अब महाप्रभु सोचे कि मुझे समय आ रहा है, अमीर होना चाहिए, अब 16-17 साल हो गया, तो एक बार उन्होंने पितृ श्राद्ध करने के लिए, क्यों जानते हैं मुझे संन्यास लेना है, तो श्राद्ध करने के लिए गया, कई माँ से परमिशन लिए, बोले मैं गया श्राद्ध, गया पिंडदान करके आता हूँ, फिर वो सालाना हर साल करना नहीं पड़ेगा मुझे इंजन, बोले हाँ। तो कुछ बालकों के साथ में लेकर के महाप्रभु गया यात्रा किए, गया में जा करके उनका भेंट हुआ ईश्वरपुरी के साथ, विष्णु पाद दर्शन किए, गुरु पाद दर्शन हुआ, तो वहीं पर अब उनका कृष्ण का आवेश हुआ। आते समय में कन्नाई नाटशाला में सबसे प्रथम साक्षात कृष्ण के साथ साक्षात कृष्ण देखे उनको, दौड़ते दौड़ते वो अशोक पेड़ में चले गए पकड़ते पकड़ते, वो वहां पे महाप्रभु जो आए गया से बिल्कुल निमाई परिवर्तित निमाई था, अब निमाई पंडित नहीं थे, भक्त निमाई हो गए थे, वो भक्त निमाई थे, हर निशी कृष्ण कृष्ण बोल करके रोना कांदना, कभी कभी कंप अश्रु पुलक ऐसे होता था, सारे गांव वाले हो क्या गया उसका, इतने उदन वाला था, सची माता भी रो रही है, सारे पति भी चले गए, सारे बालक बालिका जितने सब एक ही तो बचा है और वो भी ऐसे हो गया, सारे गांव वालों को बुलाता था, बोले देखो मेरे बेटे को हो क्या गया, बड़े बड़े सीनियर लोग आते थे आकर के, बड़े कविराज वैद्य को बुलाते थे, देख कर बोलते हाँ समझ गए क्या भारी बात, विकार हो गया, पुराना वायु था अभी प्रकोप कर लिया, आप तो बड़े विकार, ये सब पागलपन, ये जो कंप बोलो ये सब बात प्रभाव है, ऐसा करो वो विष्णु तैल ये तैल सब लाकर पाक करके मांगना होगा और नारिकल पानी पाक करके पिलाना होगा, उसको पैर में रस्सी बांध के रखो, कहीं पागल ना हो जाए इधर उधर, और ये सब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बेचारे सची माता एक ही तो उनके बेटा था, तो जो जो बोलते थे ये तैल वहां से लाए, ये करो वो करो सब करता था, और वो उनको क्या, वो तो दूसरी बीमारी था, वो कोई बात बीमारी थोड़ा था, इसलिए बड़े उद्विग्न चित्त थे। एक दिन तो शिवास सीनियर थे उनके घर बाजू में, सची माता जाके शिवास को बोला, शिवास जी आप देखिए हमारे तो घर में कोई नहीं, आप तो हमारा सहारा है, बाजू में रहते हैं, आप थोड़ा देखिए बेटे को क्या हो गया। तो महाप्रभु बैठे थे और उनको भी हमेशा कभी रोते थे कभी हंसते थे, कभी कंप आता था कभी क्या करते थे। तो शिवास पंडित आए, बोले देखो मेरे बेटा को हो गया सर, दुनिया के लोग बात प्रभाव बोलते हैं, मैं इतने ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा देखो। तो शिवास आकर के देखे तो शिवास को दर्शन करके भक्त को दर्शन किए, महाप्रभु भक्त भाव में थे, तुरंत अष्ट सात्विक विकार होने लगा, थर 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 कांपने लगे, गिर पड़े, आंख से दोनों आंख से गंगा जमुना के धारा जैसे आंसू बहने लगा, ओ कृष्ण कृष्ण बोल करके कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, वो फिर गिर पड़ते थे। शिवास उसको देख करके सची माता बोला, शिवास क्या देख रहे, बोलो ना क्या समझना है क्या। बोले सची कई दिन से हम इसी बीमारी की अपेक्षा कर रहे थे, ये अद्भुत रोग आज ही इतने दिन के बाद ही, हम तो चाहते थे पहले होना चाहिए था, ये कोई बीमारी नहीं है, यही बीमारी की तो हम सब चाहते थे। बोले क्या बीमारी चाहते थे ना, हाँ वही रोग हम चाहते थे, ये रोग क्यों नहीं हो रहा है उसको। बोले क्या रोग है, बोले बात भात कुछ नहीं, महाकृष्ण भक्ति के प्रभाव है ये सब, बाकी डॉक्टर लोग क्या समझेंगे कविराज वैद्य, ये तो महाकृष्ण भक्ति के लक्षण है, हम तो पहले चाहते थे इतने सुंदर विद्यावान बालक उसके अंदर भक्ति क्यों नहीं होता, अब पूरे भक्ति प्रकट हुआ है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भक्ति के परिचय है। इस बात को सुनकर के महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, शिवास को बुला, बोले शिवास जी चाचा जी आप अगर आज ये बात नहीं कहते माँ के सामने, कृष्ण भक्ति के प्रभाव अगर आप मुझे भी बोल देते नहीं ये बात रोग है, तो मैं आज गंगा में कूद के मर जाता। आप भक्त होकर भक्ति को नहीं पहचानेंगे, लेकिन आज मैं धन्य हो गया, आप मुझे विकार को पहचान लिए, मेरे भक्ति भाव को पहचान लिए, आलिंगन के शिवास को। तो इस प्रकार अब तो शिवास के घर में ऐसे पहले से जाते थे, छोटी उम्र में भी शिवास के घर में जाते थे, वहीं तो घूमना बाजू में थे, क्योंकि अद्वैताचार्य भी शांतिपुर में उनका घर था, लेकिन पता चला कि इष्टदेव इधर प्रकट हुए हैं और डायरेक्ट मिलना नहीं चाहते थे, बोले कैसे भी थोड़ा देखूं, विश्वास करो तो आपने एक फ्लैट इधर खरीदे शिवास के, वहां शिवास से वहां एक फ्लैट लिए, फ्लैट लेकर के वहीं बाजू में रहने लगे, और इसको तो टीचर थे आचार्य हैं, आचार्य अपने पढ़ाना शुरू किए, भागवत पढ़ाना आदि शुरू किए, और बड़े बड़े शिवास अपने भाई और जितने सब पंडित ब्राह्मण थे, और उनके जो बड़े भाई थे महाप्रभु के विश्वंबर, वो भी 12 साल के 14 साल वो भी जाते थे पढ़ने के लिए, अब आचार्य घर पढ़ना जाते थे, लेकिन आचार्य यहाँ फ्लैट लेकर के स्कूल शुरू किए केवल दर्शन करने के लिए, किसको, आपने इष्ट देव को, और वो तो बदमाश लड़का पढ़ते तो है नहीं, नंगे घूम रहे हैं इधर उधर खेल रहे हैं, इधर करते हैं बदमाशी कर रहे हैं, वो आशा रखे थे कि कब उनका दर्शन हो जाएगा, टीचरशिप में इसलिए किया, लाकर स्कूल चेंज करके इधर किया। तो एक दिन माँ सची ने बोला ये निमाई हाँ ऐसे उदंड हो रहा है, न भूख लग रहा है, भात दो खाऊंगा न, ये जाओ वो दादा को बुला, बंगाली भाषा में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, बोले दादा को बुला लाओ एक साथ में खाना, मैं अलग अलग नहीं दे सकता हूँ, आप दोनों को एक साथ में परोस दूंगा।
तो दादा को बुला लाऊं करके, हाँ भी अभी बुलाता हूँ, तो जानते हैं बाजू में श्रीवास के घर के पास उनका स्कूल चल रहा है, और क्या। सीधा गया, अरे भाई स्कूल चालू है, कोई भी जानता है स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसे नहीं घुसना चाहिए। मैं कम इंसार पूछे भाई क्या है, स्कूल चालू है, थोड़ा बाद में जाना, उनको क्या फर्क पड़ा। सीधा गया, किसी को बिना पूछे घुस गया, सीधा सीधा घुस गया। स्टूडेंट भी देख रहे हैं भाई, पूरा नंग धड़ंग, कुछ नहीं पहना है, ऐसे धूल धूसरित है, ऐसे ही घुस गया। घुस करके जा करके सबका बीच में सीधा चला गया, और विश्वरूप बैठे थे सामने, सीधा टीचर के सामने सीधा जाकर उनके पास पहुंच गया, उनके उत्तर की पकड़ा। तभी जमाने में कुर्ता नहीं पहनते थे, टेलर नहीं होते थे, सीधा उनके उत्तर ही पकड़ के, ए दादा चल चल, माँ बुला रहा है खाने के लिए चल। वो बोल रहे भाई टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो किसी को कहा सुने, टीचर की ओर देखे ना, सुने चल, हाँ टाइम हुआ खाने के लिए होता चल। और सारे टीचर और स्टूडेंट आपने नोथी पथी बंद करके पूरे दोनों आंख इंद्रिय से लगा कर उन्होंने देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अभी तक जितने पाठ पढ़े थे सारे चूल्हा में जाने दो, आज ही सारे पाठ का ही फल प्राप्त हुआ। जितने साधन भजन पढ़ा सुना किए थे आज ही उनका असली फल प्राप्त हुआ। अब तो उनको देखने लगे, अब वो देखे कि क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, विश्वरूप बोले मेरा भाई आकर क्लास का चुपचाप उठ कर चले, बोले सर मैं आता हूँ थोड़ा। अब सर कुछ बोल नहीं रहे, स्टूडेंट भी कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि सब तो एक टक देख ही रहे बालक को, और जब खींच कर ले गए जितने दूर तक दृष्टि जा रहा था उनको देखते रहे, और बाद में बैठ रहे बोले जाने दो पढ़ाई लिखाई, अब कब ये विश्वरूप आएगा उनको बुलाने के लिए, लड़के आएगा। बस दूसरे दिन बोले कि वो भाई की बुला, वो भी बुलाने के लिए आए, हम तो वही देखने के लिए स्कूल इधर लगाए, यही देखने के लिए हम पढ़ने आए, ये पोती वोती पढ़ने कुछ मतलब नहीं। तो भगवान अपने रूप से इतने आकर्षित करते हैं, इस प्रकार शिवास के घर में जाते थे सब ऐसे आकर्षित होते, लेकिन अभी नहीं पहचान पा रहे थे कि यही हमारे प्राणनाथ है। लेकिन हठात स्वयं परिचय दिए, भगवान को जो अगर स्वयं नहीं पहचानेंगे कौन पहचान पाएगा। बिना भगवत प्रसाद से भगवान को कोई नहीं पहचान सकता, तो स्वयं भगवान अपने आप को दिखाए शिवास के वहां। अरे जब दिखाने के बाद में अब संकीर्तन करने का जब मन हुआ, गया से आने के बाद में संकीर्तन आंदोलन भक्त निमाई हुए, तो उनका हेडक्वार्टर हुआ शिवास आंगन, हेडक्वार्टर। जैसे हम देखते हैं कि श्री वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण तो प्रकट हुए वसुदेव के यहाँ, है ना, नहीं भाई उनका प्रोडक्शन तो जेल में हुआ ना, जलम आधे रात में जेल में हुआ, कंस के महाराज कंस के विशाल जेल के अंदर पैदा हुआ, लेकिन ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए उसी रात। उसी रात जेल फेल खुला करके चौकीदार को सुला करके जमुना पार करके आ गए नंद भवन में, और सारे लीला नंद भवन में, यद्यपि प्रकट हुए वसुदेव भवन में, लेकिन सारे लीला खेला कहाँ हुआ, नंद मंदिर में हुआ। ठीक इसी प्रकार श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु यद्यपि प्रकट हुए सची आंगन में, जगन्नाथ मिश्र सची के वहां, लेकिन सारे उनके जो लीला खेला कहाँ हुआ, श्रीवास के घर में, वहां ही सारे करते थे नाटन का हेडक्वार्टर वही बना है, हर एक प्रकार के लीला खेला वही करते थे। नित्यानंद मिलन, अद्वैत उद्धार और ये संकीर्तन यज्ञ, जो जो कुछ करना था मेन उनके हेडक्वार्टर वही था, श्रीवास के घर। ऐसे कहा गया है श्रीमन महाप्रभु भगवान हमेशा चार स्थान में नित्य वर्तमान रहते हैं, वो चार स्थान आप लोग सब जान लीजिए। सबसे पहला है सचिर आंगन, सची माँ का आंगन में हमेशा रहते हैं। श्रीवास कीर्तन, नित्यानंद नर्तन और राघवर भवन, ये चार जगह में महाप्रभु हमेशा रुकते हैं। जब ही सची का आंगन में हमेशा रहते हैं सची माँ के वहां, और श्रीवास कीर्तन करेंगे तो महाप्रभु वहां प्रेजेंट होना ही है, और नित्यानंद प्रभु पैर उठाएंगे नाचने के लिए उनको महाप्रभु को प्रेजेंट देना पड़ेगा, और राघव उनका बहन दमयंती और कुकिंग करेंगे महाप्रभु को जाना ही पड़ेगा खाने के लिए। ये नित्य वर्तमान उनके ऐसे प्रेम भाव था, तो इसे श्रीवास स्थित थे, उनके कीर्तन अति प्रिय कीर्तन था महाप्रभु के, हमेशा वे जाते थे। जब कीर्तन आंदोलन शुरू किए महाप्रभु ने, तो उनको शुरुआत एक सैंपल से वहीं से शुरू हुआ शिवास के घर में, वहीं से कीर्तन किए, काजी उद्धार किए, बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद में बोले नहीं आप ऐसे कीर्तन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्वालिटी कीर्तन होगा, ओनली सिलेक्टेड पर्सन आएंगे, तो महाप्रभु रुद्ध द्वार कीर्तन लीला शुरू किए वही शिवास आंगन में, रुद्ध द्वार कीर्तन, बोले कवाड़ बंद करके डे में डे कीर्तन नहीं होगा, नाइट कीर्तन करेंगे, सब सारे दुनिया सो जाएंगे। बोले ये कीर्तन को सुनने के लिए देखने के लिए व्यक्ति की योग्यता होना चाहिए, जो ऐसे भक्त नहीं है ऐसे कीर्तन रस को आस्वादन करने के लिए उनका अधिकार नहीं है, तो इसलिए केवल अधिकारी जन ही इस कीर्तन रस को आस्वादन कर सकता है। ऐसे विचार करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सब परिकर के साथ और नाइट में जाते थे, रात में जाते थे शिवास के घर में, और शिवास के आंगन जो है और उनके पत्नी वगैरह सब अपने बेडरूम फेडरूम उनका एक आंगन था, बस इसी में बोले सबको सभी क्वाड़ वाड़ बंद कर दो अभी हमारा शुरू होगा। महाप्रभु स्वयं नाचते थे, शिवास आदि गाते थे, उदंड उच्छ्वास सारे रात होता था कीर्तन, सारे रात ओवर नाइट होता था, और सारे दरवाजा खिड़की बंद, अंदर से ही नाच कीर्तन होता था, अष्टजाम पूरे रात भर कीर्तन करेंगे। और इसी कीर्तन को सुनने के लिए पूरे नवदी मंडल में हला हो गया कि ऐसे मधुर इतने सुंदर कीर्तन होता है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं देना अंदर जाने के लिए। एक बार तो शिवास के सासू था, सासुड़ी शिवास जी के पत्नी की माँ, वो सुन करके आया, हाँ शिवास को बोला बेटा, शिवास उनके बेटा ही हूँ, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ, बात सब पूरी हो गई हूँ, मैं लोग देखना चाहती हूँ। बोले नहीं महाप्रभु तो परमिशन नहीं देखूँ, अरे परमिशन मैं छिप कर बैठूंगी, मैं थोड़ी चेयर में बैठूंगी, ऐसे नहीं ना कहाँ बैठेंगे ना, आपका जो चावल के पिटारी है ना, तो चावल अगर रखने के लिए आजकल जैसे सब व्यवस्था था नहीं, फ्रिज अगर था नहीं, एक पिटारी होता था बांस या बेत में बनाते थे, उसमें गोबर लीप करके उसे रख देते, उसके अंदर रखते थे। बोला वो तो खाली हो गया, उसी के अंदर मुझे डाल दो, उसी के अंदर पैक, तो उसे बंद कर देना, उसी के बक्सा के अंदर, बंद बक्सा के अंदर बैठ करके सुनी सुनूंगी, देखी तो नहीं पाऊंगी, कम से कम सुनूंगी तो सही। तो बहुत रिक्वेस्ट की, उनके पत्नी भी रिक्वेस्ट की, तो शिवास ने राजी हुए, और डे टाइम में वो आ करके वो जो पिटारी था बांस के जो बंद हुआ था उसी के अंदर घुस गई, उसको बंद कर दिए, उनका पर सामान फाम रख दिए, रख करके अब बैठ गए, बैठ करके अब महाप्रभु फिर आए, वो दिन से बैठे थे सुनने के, महाप्रभु कीर्तन शुरू किए, कीर्तन शुरू किए, कोई तो थे नहीं घर में, शुरू किए करते करते बोले कि शिवास आज हमारा कीर्तन में रस नहीं आ रहा है, कोई अनधिकारी व्यक्ति है क्या घर में? शिवास बोले कोई नहीं, ना नहीं कोई अनधिकारी व्यक्ति आ चुका है सर घर में लगता है। शिवास बोला अनधिकारी नहीं, वो हमारे सासुड़ी हैं, सास है, लेकिन वो तो प्याक है उसके अंदर बंद है, अंदर बैठी है। बोला अंदर बैठी है, निकालो उसको, वो सुन रहा है इसीलिए रस नहीं आ रहा। अरे श्रीवास ने महाप्रभु की बात सुन करके सीधा समन उतार करके ढक्कन खोला, उनके सांस के बाल पकड़ करके खींच कर उठा कर धक्का मार के निकाल लिया, गेट आउट। महाप्रभु को पसंद नहीं, तुम हटो यहां से अपने सांस के साथ ऐसे व्यवहार के उठा निकाल लिया, और बेचारे रुति निकल गए। फिर महाप्रभु कीर्तन हुआ। एक बार तो नवदीप में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फेमस था एक व्यक्ति, जन्म से ब्रह्मचारी था और बड़े साधन सिद्ध महात्मा था, भागवत आदि शास्त्र के बड़े ज्ञाता था, विद्वान पंडित था, ब्राह्मण वंशक था, और पूरे जीवन कभी अन्न आहारी नहीं किया, फल भी नहीं खाया, पूरे जीवन केवल दूध पीकर था, दुग्धहारी बाबा, दुग्धहारी बाबा था, ब्रह्मचारी भी था, बड़े विद्वान ब्राह्मण था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो देखते थे उनको चरण वंदना करते थे। भाई हे मानेंगे लोग, पूरा जीवन केवल कुछ अन्न भी नहीं खाया, फल भी नहीं खाया, केवल गोरस केवल गाय के दूध पी करके जीवन जिया है, और ब्रह्मचारी है, और इतने बड़े शास्त्रज्ञ हैं, साधक है अकेले, तो इसलिए सभी उनको बड़े सम्मान भक्ति करते थे, और शिवास भी जानते थे बहुत सम्मानीय व्यक्ति, बहुत बड़े पवित्र व्यक्ति हैं। वो भी एक बार सुन कर लोग से आकर बोले शिवास की रिक्वेस्ट, बोले शिवास जी प्लीज आप तो मुझे जानते होंगे ना, आप तो बड़े विद्वान ब्रह्मचारी हैं, बड़े पवित्र पुरुष हैं, दुग्धहारी बाबा हैं, ना मुझे थोड़ा, मैं भी चुपचाप बैठ जाऊंगा, छिपा कर बैठे, मैं थोड़ा बस देखना चाहता हूँ। शिवास सोचे इतने बड़े ब्रह्मचारी, वेद के ज्ञाता और दुग्धहारी, कितने उनके सख्त नियम है, कितने तपस्वी है, बड़ी खान पान में इतने उनके नियम निष्ठा है, वो तो जरूर अधिकारी प्राप्त होंगे महाप्रभु के, तो उनको अलाव कर दिए बैठने के लिए। महाप्रभु आए कीर्तन शुरू की, छिप कर बैठे थे उन्होंने। बोले शिवास फिर भी आज भी कोई अनाधिकारी व्यक्ति आया गड़बड़ लगता है। शिवास बोले नहीं ना, नहीं कोई आया है, शिवास बोले प्रभु वो आया है वो व्यक्ति, आप तो सुने होंगे जो रुद्रधारी बाबा, बोले नवदीप वाले ना, हाँ, बोले कहाँ है ना बेटा, बोले निकालो उनको, अरे मेरे कीर्तन को देखने सुनने के लिए दूध पीने से हो जाएगा अधिकार, ब्रह्मचारी होने से हो जाएगा, वेद पाठ करने से हो जाएगा, तपस्या कर, नहीं ना जप ना तप ना कोई दुग्धहार ना फलाहार ना ये इससे हो ही नहीं सकता, मेरे कीर्तन देखने का अधिकार तो केवल भक्ति ही हो सकता है, भक्ति के द्वारा, भक्ति के अलावा कोई उपाय ही नहीं सकता, ये तप जपन से हटाओ यहां से, उनको गाली दिए और सभी के सामने उनको हटा करके निकाल दिया गया घर से। उन्होंने इतने दुखी हो गए, इतने रोने लगे, बोले धिक मेरा जीवन, सारा जीवन ब्रह्मचर्य पालन किया, सारा जीवन शास्त्र अध्ययन किया, सारे जीवन तपनिष्ठा किया, केवल दूध पी कर कर कोई मतलब ही नहीं, अपमान कर निकाल दिया गया, कीर्तन सुनने के देखने के लिए लायक नहीं बना, वो बोले मर जाना ही आचा। इतने दुखी हुए तो महाप्रभु अंतर जाए, बोले हो गया, अभी रिपेंट करा, बुलाओ उसको उनको समझाए, बोले देखो इसके द्वारा मेरे भक्ति के बिना मेरे रस को पाने के लिए ये कोई जब तब से नहीं हो सकता, मन में भक्ति भाव होना चाहिए, अंतर में इस प्रकार समर्पण भक्ति होना चाहिए, तभी मेरे रस के आस्वाद ले सकते हैं, ये जो मेरे साथ में सब ऐसे ही हैं, बाकी सब किसी में कोई रस नहीं है, तपस्या में अपस्या में खान पान कोई नहीं, एकमात्र ध्येय है भक्ति समर्पण वास, जिसी में मेरा प्रसन्नता हो उसी को करेंगे, भले नियम हो बेनियम हो कुछ भी हो, इस प्रकार से समर्पण भक्ति आवश्यकता। तो उन्होंने उसी दिन से सब छोड़ छाड़ करके महाप्रभु भक्त बन गए। ऐसे एक बार तो शिवास के घर में कीर्तन चालू था, अब उनका एक 16 साल का बेटा था, चारों भाई के एक ही बेटा था शिवास का, अब कीर्तन जैसे शुरू हुआ रात को लगभग 9:30 बजे, अब उनका बेटा कोई बीमार था कुछ हुआ ले तो शिवास कुछ को ध्यान नहीं देते, अब बीमार था वो मर गया, यहाँ अंदर में कबाड़ बंद करके कीर्तन शुरू होता है, वो बेटा का डेथ हो गया, बिल्कुल 16 साल का जवान लड़का मर ही गया। मर गया तो शिवास के पत्नी, उनके भाई के पत्नी, जो सारे चार बहू थे वो सारे मिलकर के रोने लगे, चिल्लाने लगे डेड बॉडी के साथ में मर गया, वो साधारण रोएंगे घर में, रो रहे थे, रोने का आवाज आया, श्रीवास सुना, बोला ये अंदर से रोने का आवाज क्यों आ रहा है, महाप्रभु को डिस्टर्ब तो ना होगा, तो चूम से कीर्तन चल रहा था, छिप करके दरवाजा खोल करके आपने बेडरूम में घुस गया, जाके देखा कि आपने बेटा मर के पड़ा हुआ है, स्वयं आपने बेटा मर के पड़ा हुआ है, और चारों तरफ सर पीट पीट करके अपने पत्नी और भाभी आदि सब ये सब रो रहे हैं, जाकर के डांटा उनको, बोले पागल हो गया आप लोग को, अरे बेटा मर गया आपको चिंता नहीं, बोले बेटा मर गया, अरे आपको पता नहीं कोई मरते समय में अगर अंत्य नारायण स्तुति किसका भगवान के स्मरण हो जाए उनका जीवन सफल हो जाए, अरे साक्षात भगवान वैकुंठपति नारायण घर में नाच रहे हैं और इसी समय उनका प्राण गया, कितने बड़े महासौभाग्य है, मेरा कब ऐसे सौभाग्य होगा मेरे बेटा जैसा कि प्रभु नाचते नाचते मैं शरीर छोड़ूं, अब रो रहे ये तो बहुत आनंद की बात है, लेकिन कैसे समझेंगे इस बात से, मात्र हृदय कैसे समझेगा, वो तो रो रहे तो डांटे, बोले देखो अगर वॉल्यूम बढ़ा करके रोएंगे तो ये तो मरा, मैं भी अभी सुसाइड कर लूंगा, अभी हाथ में मुंह, बोले रोना है संसार संसार को दिखाने के लिए रोना है, गेट आउट, जाके बड़ी दूर में रो, वॉल्यूम डाउन करके लो, वॉल्यूम में रोने रोते रहना, हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जो देखा जाएगा, अभी तक मैं नहीं चाहता हूं कि महाप्रभु को डिस्टर्ब हो नृत्य में, कह करके तुरंत उनको भगा दिया, वो अंदर जाकर कबाड़ बंद किया, बताया भी नहीं महाप्रभु को ऐसा घर में हुआ करके, लेकिन बाकी लोगों को पता चल गया, अरे उनका बेटा स्वयं मरा है, घर में रो रहे हैं, वो डांट करके ऐसे कबाड़ बंद कर दिया और कीर्तन में शुरू हो गए। इतने लंबा समय तक कीर्तन होने लगा, 2.5 प्रहर के बाद में, एक प्रहर 3 घंटा का होता है, तो 3-3, 6, 7.5 घंटा के बाद महाप्रभु कीर्तन रुके, सभी लोग रुके उस कीर्तन में, महाप्रभु बोले शिवास कीर्तन तो हुआ लेकिन इतने आनंद आज नहीं आया, लगता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, महाप्रभु साक्षात भगवान, शिवास बोले नहीं, जहां आप आकर के आनंद नृत्य कीर्तन करेंगे वहां अमंगल हो कैसे सकता है, आप स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी, और आप आकर नाचेंगे मेरे आंगन में मेरे घर में वहां अमंगल हो कैसे सकता है, संभव ही नहीं ना, वो सत्य है मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपके परिवार में कुछ घर में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, हो कैसे सकता, मेरे परिवार में अमंगल कैसे संभव है? आप जो मेरे घर में रहते हैं, मेरे घर में कैसे हो सकता है? वो तो श्रीवास्तव मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाकी भक्त लोग बोली ये पागल हो गया, सब जानकर हम ही खुद देखे वो बोल भी नहीं रहा। तो वो तो आश्चर्य होकर के दुखी हो गए। महाप्रभु बोले क्या आप लोग कैसे गंभीर हो रहे? ना प्रभु क्या बताएं, सच बताना, बोलो बोलो ना प्रभु। अब ढाई तीन प्रहर पहले उन्होंने गया था, डांट करके मना करके आया, उन्हीं का ही बेटा मर चुका है और उनके पत्नी आदि रो रहे थे, उनको डांट करके भगा करके ऐसे कबाड़ बंद करके आपके साथ नाच रहा था। महाप्रभु सुने, श्रीवास को पकड़ लिया जाकर, श्रीवास आपके बेटा मर चुका है, आपके पत्नी आदि रो रहे, तू फिर भी मन में कोई शोक के चिन्ह भी नहीं लाया, आके मेरे साथ उदंड कीर्तन कर रहा है, हंस रहा है, कोई नहीं इतने मेरे लिए आसक्त है, आपने युवक पुत्र मर गया, ऐसे बड़े रात हुआ तुम भी 7 घंटा बिता दिया मेरे साथ कीर्तन में, कोई चिंता की बात नहीं, मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूं? महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बोले चलो चलो चलो, मुझे बताओ कहां बेटा। तो वो पहले उनके पत्नी अगर तो डांट देते, बेचारे दूर में जा करके कुंकुं करके रो रहे थे, वॉल्यूम डाउन करके, क्या करे, डेड बॉडी पड़ा था इधर, अब 7 घंटा बीत चुका है, डेड बॉडी तो बिल्कुल कट मर गया है। महाप्रभु दरवाजा खोल के गए, अब जाके देखे कि उन्हीं के बेटा मृत शरीर पड़ा हुआ है। जैसे महाप्रभु के सारे लोग चले गए, बड़े दुख हो गया, और उनके पत्नी सब दौड़ कर आए और सर पीट कर भल्लिम देकर फिर रोने लगे। जब रोने लगे सारे लोग इकट्ठा हो गए, बाकी लोग सब आ गए, तो महाप्रभु शिवास ठीक है नो प्रॉब्लम। तो महाप्रभु बोले किस बालक को जो 7.5 घंटा पहले डेड हो चुका था, बोले शिवास के बेटा तू किस शिवास को छोड़ के चला गया, क्यों चला गया छोड़ करके, शिवास मेरा भक्त है तो नहीं जाना चाहिए छोड़ करके। वो दुखी हो रहे, जैसे महाप्रभु ये बात कहे वो डेड बड़ी उठ करके बैठ गया, 7.5 घंटा पहले मर चुका था, वो सर पीट कर रो रहे थे क्रियाकर्म करने के लिए, बोले तो नाच रहा है कब आएगा सब संस्कार करेगा, लेकिन सब संस्कार सब उठकर बैठ गया, सारे चारों तरफ परिवार के सामने डेड बॉडी उठकर के बैठा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया महाप्रभु के चरण में, बोला प्रभु आप ही के जो नियम है मैं तो इसी को मानता हूं, आपके नियम को तो कोई अमान्य कर ही नहीं सकता, आपने मुझे व्यवस्था किए 16 साल तक इस घर में रहूं, उसके बाद मेरा असल मकान को फिर जहां ट्रांसफर हो जाए, अब मुझे ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया, पूछते हैं क्यों गया, अरे आप ही तो ट्रांसफर ऑर्डर इशू किए, हमें गया। अब ये बात सुन करके तो उन्होंने तत्व कहा, और भी कुछ तत्व कहा उन्होंने कि कैसे कौन इस संसार में कोई किसी का पिता माता भाई बंधु नहीं होते हैं, सब अपना अपने कर्म के फल के अनुसार आते हैं, और आप जिनको जहां जितना जितने दिन तक जिस प्रकार से रहने के लिए व्यवस्था किए हैं, ऐसे आपके नियम के अनुसार सब ठीक ठाक उसी को पालन करते हैं, मैं भी तो आपके अधीन में हूं, अब मैं क्या करूं, आपने ऑर्डर पास किए हैं जाने के लिए, तो अभी जाता हूं, कृपा करके जाते समय में यही मेरे महाभाग्य है आप इस घर में नित्यरत थे, मैं जा रहा हूं, आपने मुझे स्मरण की मैं आया, अब मैं जा रहा हूं आपके शरण स्पर्श करके, जैसे जन्म जन्म में आपके स्मृति बनी रहे मेरा, बस यही कह करके दोबारा चला गया। अरे सब हरि बोल कीर्तन करने लगे, और ये शोक सब शांत हो गया, और शोक फोक नहीं हुआ, सब शांत हो गए, पत्नी लोग शिवास लोग आनंद हो गए, जब आनंद हो गए बेटा तो चला ही गया ना, तो फिर महाप्रभु बोले शिवास और सारे पत्नियां चिंता मत करो, एक बेटा गया कोई बात नहीं, अभी तक पढ़ा लिखा नहीं था, अब आपके बनी बनाए रेडीमेड 2 बेटा मिलेगा, बनी बनाए और पढ़े लिखे हैं बिल्कुल, कोई खर्चा वर्चा बढ़े स्कूल एडमिशन और स्कूल फीस देना नहीं पड़ेगा, बनी बनाए रेडीमेड 2 लड़का मिलेंगे, आप तैयार हो जाओ, 2 लड़के कहां से मिलेंगे रेडीमेड पढ़े लिखे, बोले एक मैं हूं एक नित्यानंद है, 2 आपके लड़के हैं। ये महाप्रभु स्वयं, नित्यानंद भी साथ में थे, आपने श्रीमुख से आपने आप जानबूझ करके उनके बेटे बन गए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों, श्रीवास अपने सब परिकर उनके भाई उनके पत्नी के साथ में स्वयं राजी खुशी से उनके बेटे बन गए, जिनके बेटे बन गए सख्यात कृष्ण बलराम, तो उनके भाग्य का कोई सीमा हो सकता है, कैसे सीमा हो सकता है? तो इसलिए महाप्रभु हमेशा जाते थे, कई प्रकाश लीला किए हैं, कभी कभी बैठ जाएंगे बोले अभिषेक करो मेरा, अभिषेक करो, तो सारे सप्रीकर लोग आएंगे अभिषेक करने, गंगा जी से पानी ला ला करके डालते थे उनके ऊपर, सारे लोग तो पूजा में उनके शुद्धि में लगे थे। एक श्रीवास का घर में नौकरानी थी काम करने वाली, जिनका नाम था दुखी, वही बेचारा गागर में दो दो गागर पीतल के बड़े बड़े मटका होता पानी भर भर के लाती थी, महाप्रभु स्नान कराते थे, बोले आप लोग तो सब मेरे पास नाच रहे स्तुति कर रहे हैं, पानी क्यों ला रहे गंगा जी से इतना। तो श्रीवास बोले वो दुखी ला रही है नौकरानी। बोले दुखी जो मेरे लिए पानी ला रहा है कष्ट करके, वो दुखी कैसे हो सकता है, उसका नाम चेंज करो, उनका नाम सुखी है आज से। उनके नाम सुखी करके महाप्रभु बुला करके तुरंत उनको आशीर्वाद दिए, दुखी उसी दिन से सुखी हो गया। महाप्रभु घोषणा किए, बोले आप लोग सुखी नहीं हो पाए मेरे कृपा के भाजन, मेरे बगल में खड़े होकर के फोटो उठा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, मेरे साथ बैठ रहे हैं, नाच रहे, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मेरे कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। ये बिचारी नौकरानी मुझे ना अभिषेक कर पाई, ना मुझे देख पाई, ना छू पाई, लेकिन बिचारी दौड़ कर जाती है, पानी लेकर आती है, फिर जाती है, दौड़ कर आती है, मेरे लिए श्रम कर रहा है, इसलिए मेरे कृपा के सबसे पहले पात्र वो बनेगी, उनको अभिशाप दे। तो महाप्रभु इस प्रकार दिखाते हैं, जो कोई उनके साथ में रह करके उनके छुआ पूजा करते हैं उनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, जो सचमुच उनके लिए काय मन इंद्रिय सब लगा करके उनके पीछे सेवा कर रहा है, भले उनके पास नहीं है पाए, मेरे कोई योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, मैं तो ही काम कर सकती हूँ, बड़े बड़े लोग सब कर रहे हैं, पास में जा रहे हैं, महाप्रभु की कृपा सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है ढूंढ ढूंढ करके, यही से दुखियों को सुखी करने के लिए महाप्रभु की कृपा है। तो महाप्रभु डिक्लार किए, बोले श्रीवास तेरे घर में तेरे तो मैं नंदन बना हूं, तेरे लड़का बना हूं हम दोनों भाई, लेकिन तेरे नहीं, तेरे परिवार नहीं, मैं तो तेरे घर में दास दासी बिल्ली कुत्ते चिट्टी तक भी सबको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, क्योंकि आपके घर के हैं, आपके घर में जो भी आ जाएगा उनके सौभाग्य की सीमा नहीं रहेगा। ये महाप्रभु खुल करके इसे बोलते थे, उस श्रीवास को इतने इतने स्नेह करते थे, सब कुछ लीला उनके घर में करते थे। एक बार तो नित्यानंद प्रभु तो उनको बोले तू उनके घर में रहो, नित्यानंद प्रभु से मिलन हुआ, नित्यानंद प्रभु को लगभग 30-32 साल की उम्र हो गया था और वो कितने एजेड हो चुके थे श्रीवास और मालिनी, बोले उनके घर में रहो। नित्यानंद पंडित श्रीवास और मालिनी को अपने पिता माता मानते थे, मालिनी बूढ़ी हो चुकी थी, उनके गोद में रह करके उनके स्तनपान करेंगे, 32 साल का बहना लड़का उनके गोद में जाकर अपने हाथ से खाएंगे नहीं, अपने हाथ से कभी खाएंगे नहीं, वो मालिनी खिलाएंगे तब खाएंगे। अद्भुत लीला कर रहे थे, अद्भुत लीला मतिशाल आदमी। तो एक बार तो महाप्रभु गए जाकर के देखे कि हम तो मैं आता हूं आपके घर में, हेड ऑफिस आपका घर में है, नित्यानंद आपके घर में रहता ही है, वो सारे भक्त पूरे नवदीप के आसपास के सारे आपके घर में आते हैं, वही कीर्तन होता है, वही सत्संग होता है, भोजन पानी आपको कराना पड़ता है, लेकिन यू हैव नो इनकम सोर्स, आप तो कोई धंधा पानी नौकरी वाकरी कुछ करते ही नहीं, कमाई तो नहीं है, इतने सारे खर्चा करता है, सारे पूजा कीर्तन ये सारे कैसे चलता है, ना प्रभु बस आपकी कृपा से चलता है। अरे चलता है, इतने बड़े परिवार आपके, चार चार भाई है और चारों शादीशुदा है, कैसे चलेगा, गृहस्थ लोग है, कुछ तो धंधा पानी करना ही चाहिए, कोई इनकम होना चाहिए ना, पुरुष ने हमारे पास टाइम नहीं, अरे कुछ तो काम करो ना, काम कुछ आता ही नहीं, शुरू से आपको भजन किए बाकी कुछ किए ही नहीं, हमको नौकरी धंधा आता नहीं, को हम काम कोई आता नहीं करने के लिए, अरे को बिजनेस करो, बिजनेस में नहीं आता, हम तो किए नहीं, कैपिटल भी नहीं है, क्या करेंगे, लोगों से भी संपर्क रखा नहीं, और कुछ नहीं करोगे तो परिवार चलेगा कैसे, इतने बड़े चार चार भाई है, सब शादीशुदा है, तो कुछ नहीं करेंगे तो भीख मांगो, भीख मांग कर चलो, ना भीख भी नहीं मांग सकता ना, क्यों ना, हम ब्राह्मण नहीं, भीख मांगने का अधिकार तो ब्राह्मण सन्यासी को होता है, हम तो है ही नहीं। बोले भीख भी नहीं मांगोगे, कुछ काम भी नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, मरोगे, खाओगे कैसे, ऐसे जब सभी का सामने पूछे, शिवास जी ने तीन ताली बजाए, महाप्रभु इसकी ये क्या, ताली का मतलब क्या होता है, बोले ताली का मतलब ये होता है, मैं तो पूर्ण भरोसा सपरिवार आपके ऊपर हूं, आपने स्वयं गीता में वचन दिए हैं, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता हूं करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, तो मेरा इस वाक्य में पूर्ण भरोसा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं करता हूं, सपरिवार सपत्नी सपुत्र आपके दिन रात भजन करते हैं, मेंटेन आप कर ही रहे, हम करेंगे, है मेरे दायित्व है, तुझे मेंटेन करूं मैं, और क्या, मैं तो ही भरोसा में हूं। आप कुछ नहीं करोगे? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पूरे चारों भाई परिवार कुछ नहीं कोई करते, हम कीर्तन करते रहते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? वो ताली तीन वाला बोला, ताली तीन इसलिए बताया क्योंकि मेरा तो पूरा विश्वास है कि आप चलाएंगे। अगर आप सप्लाई नहीं दिए, पहला दिन हम कीर्तन करेंगे और वेट करेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, दाल चावल सब्जी कुछ आएगा, कुछ आया नहीं, शाम हो गया, रात हो गया, आठ बज गया, दस बज गया, कुछ आया नहीं, तो क्या करेंगे ना? पहला ताली सारे परिवार को बोला, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, आज उपवास हो गया, हरिवास पानी पी लो, गंगा के जब जलाहार करके सो जाएंगे, पेट में गीला कपड़ा डाल के सो जाएंगे। बोले दूसरे दिन को वेट करेंगे, अब दूसरे दिन फिर कीर्तन शुरू कर देंगे, भूखे पेट पानी पी करके करेंगे करेंगे करेंगे, फिर रात हो गया, दस कुछ नहीं है, सारे परिवार वाले देखेंगे, फिर दूसरा ताली बजाएंगे, कोई बात नहीं, आज भी बड़ी कृपा है, आज भी डबल एकादशी हो गया, चलो जलाहार करके सो जाओ। अब तीसरे दिन भी नहीं मिला सप्लाई, बोलो उनके मुंह से तो नाम नहीं निकलेगा, आप ही लोग तो अभी किए होंगे, एक दिन निर्जला एकादशी को भी हाल हुआ होगा, दस बजे तक था, है ना? नहीं, अगर दो तीन दिन ऐसे करना पड़े तो भाई भक्ति भाड़ में जाने दो। बोले दो दिन कर लूंगा, तीसरे दिन को अगर नहीं होगा, बोले परिवार वाले तो मेरे ऊपर भरोसा है, मैं बड़े हूं, लेकिन गांव वाले बोलेंगे मर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, देखो धंधा पानी नहीं करें, सब मरे, सब परिवार मर जाएंगे। बोले इसी में तीन ताली क्या? बोले मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा तीसरे दिन। बोले क्यों? बोले मेरा तो पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर, मेरे दुर्भाग्य है आप इसलिए मुझे खाने नहीं दे रहे, लेकिन सारे गांव वाले आपको गाली देंगे, मैं मर जाऊंगा तो, मैं मेरे परिवार भूखे मर जाएंगे, सारा गांव वाले बोलेंगे देखो ये कृष्ण भजन कर रहा था, कच्चू मिला मरा, सारे सब परिवार मर गए, तो आपको गाली देंगे, आपके भजन नहीं क्यों करेंगे, तो आपको अपमान, मेरे से सज्जे नहीं होगा, मैं भले भूखे मर जाऊं लेकिन आपके अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तीन दिन के दिन मैंने गले में पत्थर बांध करके गंगा में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले पत्थर बांध करके डूब जाऊंगा, पत्थर बांध करके, उनको बाद में पता चलेगा कि मर गया, किसी को पता ना भी चले, डेढ़ बड़ी भी उठेगा ही नहीं, ऐसे करके मर जाऊंगा, क्योंकि आपके अपमान में सज्जे नहीं कर सकता। जैसे इस प्रकार कहा, तीन गली मार करके महाप्रभु उनके बाद सुन करके इतने रोने लगे, नित्यानंद आदि सारे पार्षद बैठे थे, उठ कर खड़े हो गए, नित्या शिवास को आलिंगन कर लिए, जा करके आलिंगन करके घोषणा कर ले, बोले शिवास मैं आज सभी के सामने घोषणा कर रहा हूं, सारे दस दिक्पाल मेरे घोषणा को सुन ले, भले सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, लेकिन सप्लाई आपको बराबर देना पड़ेगा, उसको आपके घर में कभी कमी हो नहीं सकता, आप जितने खर्च करोगे लक्ष्मी जी सप्लाई देगी, ये मेरे प्रतिज्ञा है, ये मैं अभी ऑर्डर पास कर दिया लक्ष्मी के लिए, सी हैज टू मेंटेन योर फैमिली। ऐसे भगवान ने अद्भुत वरदान दिए उनको, ऐसे करके महाप्रभु 26 साल तक, जन्म से लेकर के 26 साल तक दिन प्रतिदिन हर घड़ी हर समय हर मुहूर्त शिवास के साथ अति निकट लीला विलास किए। अंत में जब संन्यास लीला हुआ, अति अति मर्माहत अति दुखद लीला था, उस लीला के बाद में तो अवर्णनीय दुखक बात था, संन्यास लेकर के महाप्रभु जब रात प्रहर में गंगा पार करके चले गए छोड़ करके, अरे सची माँ तो जड़ हो गई रोते रोते, बाकी जो दुख और शिवास आदि आए, रोने के मार्केट खुल गया, पूरे नवदीप रोने लगा, ऐसे रो करके आप महाप्रभु चले गए आए नहीं, जब पूरी चले गए अब शिवास को दुख सहन नहीं हुआ, शिवास ही नवदीप त्याग दिए, अपने चारों भाई नवदीप छोड़ दिए, बोले हम नहीं रह सकते, मेरे घर के बाजू में सची आंगन, ऐसे महाप्रभु की लीला में देखता था, आज वो चले गए छोड़ करके, मैं कैसे रह सकता हूं, तो भी अपने घर द्वार छोड़ करके कुमार हट में आकर रहने लगे। इस प्रकार शिवास जो ठाकुर है महाप्रभु के अभिन्न पार्षद है, उनके भक्त में सर्वश्रेष्ठ है शिवास पंडित, स्वयं नारद जी है भगवान के मन की अवतार है, जब ये अलग नारद जी के रूप में प्रकांड ब्रह्मचारी थे, सब ब्रह्मचारी बनाते थे, अब इस युग में श्रीवास बनकर गृहस्थ स्वयं बने और इस प्रकार के आदर्श गृहस्थ का शिक्षा सबको दिए हैं। इस प्रकार शिवास ठाकुर आज उनके प्रयाण की तिथि है। ऐसे महाप्रभु के अति निकट पार्षद जिनके घर में हमेशा महाप्रभु रहते हैं, जिनके कीर्तन में हमेशा नित्य भाग लेते हैं, जिनको सौभाग्य की सीमा दिए, जानबूझकर कि जिनके पुत्र बन गए, ऐसे इसी शिवास ठाकुर के आज तिरुभाव तिथि में हम लोग, क्योंकि भक्त है, भक्त के प्रतिनिधि है, हम लोग भक्त बनना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसे भक्त प्रतिनिधि भगवान के अभिन्न पार्षद श्रीवास ठाकुर के श्री चरण में आज सब अंतर खोल करके प्रार्थना करेंगे कि हे श्रीवास ठाकुर, आपके जिस प्रकार के भजन में निष्ठा, श्री गौर चरण में जैसा रति था, जिस प्रकार के आपके भजन निष्ठा, जिस प्रकार समर्पण था, उसके करोड़ों हिस्सा से एक हिस्सा अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना से आज हम श्रीवास ठाकुर की तिरुभाव तिथि में उनके श्री चरण में हमारे श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। श्री श्रीवास ठाकुर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे।